एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक थी माँ रूहानी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान ने हमको चुन लिया। ठीक है, हमें अपना बना लिया और केवल यही नहीं किया, अपना बना करके अपने किसी कार्य में भी लगा दिया। ये बहुत बड़ा और ही भाग्य है। एक तो भगवान ने हमको चुना है, शिव बाबा ने चुना है, हमारा जीवन बनाया, हमें अपना बनाया, साथ साथ हमारा भाग्य बनाने के लिए, ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए अपने किसी कार्य में लगा दिया। देखिए, ये बहुत जो बाबा के कार्य में आप सभी लगे हुए हैं, देखो जो कार्य में लगे हुए हैं, बाबा की याद करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। बाबा तो ये कहते हैं जो इसमें लगे हुए हैं, सारा वातावरण बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है भगवान की। एक हम उनके सहायक हैं, उनके मददगार हैं, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें भी बाबा ने आज से 58 वर्ष पहले 1957 में बाबा ने चुना, ढूंढा जैसे कहे। हम तो कोई गुम ही हो गए थे, उस दुनिया में खो गए थे, लेकिन हमको किसी को भेज करके बाबा ने हमको ढूंढा और परिचय दिया कि आप आत्मा हैं, दिलवाया परिचय आप आत्मा हैं। काफी दिन तक ये इसी पर बहस चलती रही, आखिर भी हमने कहा ठीक है, अपने को आत्मा मान लिया। बस यही एक पहला ही मैं आत्मा हूं ये मानते ही, ये कहते ही मैं आत्मा हूं, एक अनुभव होना शुरू हो गया। बहुत और कोई ज्ञान सुना ही नहीं, अभी यही सुना कि आप आत्मा हैं, शरीर से भिन्न हैं। उस समय कोई ज्योति बिंदु की बात भी नहीं थी कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये अभी ज्ञान नहीं था। अंगुष्ठ सदृश कहते थे, वो बाद में मालूम पड़ा, परंतु यही एक बात कि आप आत्मा हैं, इसकी अनुभूति होनी चालू हुई। श्रेय सारा जीवन ही बदल गया। हम तो पहले इंजीनियर, हम पढ़ते थे पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे स्टूडेंट्स का जीवन होता है वैसा ही था, कोई बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी और लोगों से ठीक था। तो कुछ दिन हुए, हमने जब ये एक पहला लेसन सुना था बहुत अच्छा लगा, तो दो चार दिन में ही सारा हमने ज्ञान, हॉस्टल में रहते थे, सारा ज्ञान सुन लिया। हमारे ओम प्रकाश भाई हैं जो इंदौर से, उनके इंचार्ज है, वो हमारे साथ थे, पूरा ज्ञान सुना, बड़ा अच्छा लगा। आप बताइए कितना वंडरफुल नॉलेज है। यहां हमारे कई लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं हमारे पास आके मिलते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन वाले भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कहते हैं क्या बोलते हैं वो, मैं बताऊं आपको क्या, कि आप भी जानते होंगे कि यहां पर बहुत शांति है। उनके मुख से निकलता है जब वो शांति वन में प्रवेश करते हैं, कहते हमें तो बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है, फिर कहते हैं बड़ा स्नेह है यहां, सब आपस में स्नेह प्यार से मिलते हैं, बड़े स्नेह प्यार से व्यवहार करते हैं, ये भी ठीक है। फिर कहते हैं यहां पर बहुत सब खुशी झलकती है चेहरों से, कोई गुस्सा नहीं देखने में आता। फिर कहते हैं यहां बहुत बड़ी डेडिकेशन है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत निस्वार्थ सेवा यहां पर हो रही है। हम कहते हैं ये भी राइट बात है। और भी बहुत कुछ बातें कहती है, कई तो यहां तक कहते हैं कि यहां तो ये स्वर्ग लगा पड़ा है, स्वर्ग है। हम उनसे फिर प्रश्न पूछता हूं मैं, आपने इतनी महिमा की, ये है ये है ये है, आप बताओ ये यहां क्यों है? आप भी अनुभव करते हैं, भले सेवा केंद्रों पर भी होता है, वहां भी जाते हैं तो बड़ी अनुभूति होती है, बहुत कुछ होता है, और विशेषकर मधुवन शांतिवन में तो और ज्यादा होता है। तो मैं उनसे पूछता हूं ऐसा क्यों है, क्या बात है, रीजन क्या है इसका? तो क्या कहेंगे आप, क्या रीजन है इसका, बोलो कोई बोले, यानी इतना है सब अनुभव करते हैं तो रीजन क्या है इसका? तो मैं ही बता देता हूं आपको, वास्तव में शिव बाबा तो है ही हमारे साथ, लेकिन इसके पीछे ये सब वैल्यूज है, शांति है, प्रेम है, क्लीनलीनेस है, भोजन यहां का अच्छा है, बहुत कुछ बोलते हैं, सब ठीक है, ये सब वैल्यूज है, यानी मूल्य है। ये वैल्यूज के पीछे क्या है हम बताएं प्रिय बहनों और भाइयों, जो हमको बाबा ने एक मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज दिया है, मोस्ट वैल्यूएबल, इतना सुंदर, इतना प्रैक्टिकल, रैशनल, यानी एक्सपीरियंसेबल, वैल्यूएबल, जो ज्ञान दिया हमको, रीजनेबल, कोई भक्ति कांश नहीं है, ये बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज है। इसको अगर हम बच्चों को समझ आया, बहुत आप खुशकिस्मत है कि इतना जो ज्ञान हमारा है, लोगों के हिसाब से तो अटपट है ना, वो ज्ञान हमको समझ, जिसको समझ आ जाता है उसका जीवन बन जाता है। हमने जब सुना ये ज्ञान आत्मा का, परमात्मा ही शिव है, आप बताओ कोई कहता है क्या? वो तो शिव शंकर को मिलाकर क्या कह देते हैं, सोचो कितना गुह्य रहस्य है, बताइए। परमात्मा परम धाम का वासी है, परम धाम का ज्ञान भी नहीं था हमको, क्या है, हम कहां से आए, कहां जाना है पता ही नहीं था। गीता का भगवान कौन है वो बताया, 84 लाख दुनिया हम नहीं जाते ये सुना, यानी पतित पावनी गंगा नहीं है ये बताया गया। इतना रीजनेबल चीजें हैं जो बुद्धि गम्य है, ऐसे नहीं कि हम कोई अंधश्रद्धा से चल रहे हैं, बहुत बुद्धि को जचता है, यानी रीजनेबल चीज है ये, यानी रैशनल है ये। जब ये ज्ञान सुना तो ये कहा भाई ये इतना ऊंचा ज्ञान जो है कोई मनुष्य नहीं दे सकता, किसी शास्त्र में नहीं है, आप देख लो। हां थोड़े बहुत हिंट मिलते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नॉलेज आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर, हां ये जो बताया सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का है और हूबहू रिपीट होता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, किसी को पता नहीं दुनिया में। ये सब बातें सुनकर के कहा भाई कौन दे सकता है नॉलेज? आप देखो किससे पूछो, आप बड़े बड़े सन्यासी ऋषि मुनि ये वो बड़े विद्वान पंडित आचार्य, क्या आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में कोई क्लियर कट उनके पास ज्ञान नहीं है। कभी ब्रह्म कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी हमारे अंदर है, कभी हमारे बाहर है, ऐसे बोलेंगे हम और ही कंफ्यूज हो जाएंगे। हम बताएं क्लियर आपको। तो इतना सुंदर ज्ञान सुन के हमने कहा ये जो ज्ञान देने वाला है कोई इंसान नहीं, कोई ऊंचा ही है। तो हम चले, 7-8 दिन हुए थे हमने जिसने ज्ञान दिया, कहा हमें वो मिलाओ। बाबा कहते हैं ना जब किसी को ज्ञान अच्छा लगता है और वो निश्चय होगा तो बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेगा। हम भी चले बाबा से मिलने के लिए। बाबा दिल्ली में आए हुए थे रजौरी गार्डन में, 1957 की बात है। उस वक्त बहुत थोड़े सेंटर थे, सारे इंडिया में कोई 10-20 सेंटर मुश्किल से होंगे, सारे पंजाब में अंबाला अमृतसर शाहबाद ऐसे तीन चार सेंटर थे मैं समझता हूँ, हरगोबिंदपुर कोई नहीं था। इंडिया में भी बहुत कम सेंटर थे, भाई बहन भी बहुत कम थे। तो हम निकले बाबा से मिलने के लिए, गए वहां पहुंचे, जो फर्स्ट टाइम बाबा से मिले अमृत सुबह क्लास के बाद, बाबा मामा को देखते ही क्या अनुभव हुआ कि यही वास्तव में हमारे लौकिक यानी अलौकिक माता पिता है, ये हमारे अपने हैं। और उनको उनकी देख करके आकृति ऐसे महसूस हुआ कि दो फरिश्ते जैसे सामने बैठे हुए हैं, एक तो सफेद दूसरा उनका सारा आकृति। उनको देख करके ऐसे महसूसता आई जैसे कि मैं फरिश्तों से मिल रहा हूं। हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, बाबा मम्मा की गोद में गए वहां पर, उस वक्त जब हम मिलते थे ऐसे नहीं कि हम कोई हाथ जोड़े पांव पड़े ये कहें या फूल दें, ऐसा कोई छा ही नहीं जैसे अभी दुनिया में होता है, उस वक्त भी होता था। तो जब बाबा की गोद में गए फिर मम्मा की गोद में गए, बाबा ने एक वरदान दे दिया। अभी हम फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, एक बाबा के मुख से महावाक्य निकले, बच्चे ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, अब देखो बाबा फ्यूचर यानी वो भिगु ऋषि है तो उसने फ्यूचर बता दिया हमारा, बच्चे ये आपकी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, बोलो स्पष्ट कह दिया। नहीं तो मैं अभी सात दिन होते ज्ञान में आठ दिन हुए होंगे, ऐसे किसी को बोले कौन बोल सकता है, जो अथॉरिटी जो हमारा समझता है कि मेरा है अपने मेरे के लिए बोल सकता है। तो बाबा ने बोला बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई काम आने वाली नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, तब भी बाबा ने कहा देखो उस वक्त 1957 में भी यही कहा, अब तो सिर पर खड़ा है फिर उस वक्त सामने खड़ा है, ऐसा उस वक्त ऐसी बातें थी भी। जब भी देखो दुनिया में ऐसी कोई ना कोई विनाश की बातें होती होती, 1957 था आप जानते हैं, 1857 में वो हुई थी इंडिपेंडेंस फर्स्ट वार हुई थी, हमने कहा अब 100 साल बीत गए हैं तो फिर शायद फिर होगी लड़ाई, और कोई नहर स्वेज की ये कि कोई ना कोई खेटपिट, यानी दुनिया को चैन नहीं। जब से शिव बाबा ब्रह्मतान में आए दुनिया में चैन जो है वो सारा खत्म होता जा रहा है, और ये दिन प्रतिदिन जो है बेचैनी सफरिंग्स बढ़ती चली जा रही है। तो हमने कहा बाबा ठीक है आप कहते हैं कि ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है तो मैं पढ़ने की क्या दरकार है, हम तो निश्चय बुद्धि थे कि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा के कोई नहीं सुना सकता। और चेंज आया लाइफ में, ये चेंज आया देखा कि देखिए पवित्र हम सारा जीवन पवित्र रह सकेंगे इस ज्ञान के, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने देखा वहां बहुत, अब तो हम दादियां कहते ना, सब बहनें थी, बहनें भी थी भाई भी थे, ये है सब जैसे कि एक भागवत जिसे कहते ना रिपीट हो रहा था ऐसा, सब गोप गोपियां जिसे कहते हैं हम अभी, तो वो ऐसा फीलिंग आती थी कि ये सारा भागवत रिपीट हो रहा है। हमने देखा एक सीन, देखो हम बताएं आपको, दादी प्रकाशमणि के आपने बहुत अनुभव सुने होंगे, पीछे बहुत भाई बहनों ने सुनाए होंगे, हमने देखा वो किसी सेवा केंद्र से सेवा करके किसी कॉलोनी से वापस आई, बाबा बैठे थे, बाबा ने उनको इतना स्नेह दिया इतना स्नेह उडेला, उससे मालूम पड़ा जैसो कि ये जो हमारी दादी हैं ये कि बहुत बड़ी बहुत बाबा का बहुत मुर्बी बच्चा है, ऐसा फीलिंग आई कि बहुत बड़ी उस वक्त दादी नहीं बहुत बड़ी बहन है, ऐसा फीलिंग आई। तभी से हमने देखा, तब हमें उनसे दादी से मिलने का दादी से परिचय तब हुआ। इस प्रकार से हम जब उन्होंने बाबा ने ये कहा तो हम वापस आए तो एक लेटर बाबा को लिखा था इंग्लिश में, वैराग तो बहुत था, विनाश सामने खड़ा है इतनी लंबी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी क्या होगा, तो वैराग तो आया हुआ था बहुत, और बाबा को लेटर लिखा, बाबा आई डोंट वांट टू इंजीनियरिंग के जो कार्य होते हैं, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस ऑफ गोल्डन एज एंड सिल्वर एज विच यू आर इरेक्टिंग, जो एक बहुत बड़ा आप सत्युगी और ये स्वर्ग का महल बनाना चाहते हैं, उसमें एक मैं भी एक स्टोन बनना चाहता हूं। फिर लिखा, आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वॉन्ट टू बी रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परम धाम एंड देन कमिंग टू गोल्डन एज। आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच वी हैव इन्वेंटेड। ऐसा पत्र इंग्लिश में लिखा, और बाबा का दो दिन के अंदर ही, दो तीन दिन में जवाब आया इंग्लिश में। बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी, अभी हमारे बाबा हमको इंस्ट्रक्शंस को, डायरेक्शंस को देने शुरू करते हैं। बाबा ने कहा, चाइल्ड, बहुत लंबा सुदर्शन चक्रधारी, बाबा बहुत पत्र लिखते थे, आधा पत्र तो इन उससे भर जाता था, सुदर्शन चक्रधारी और वो ब्राह्मण कुल भूषण, ऐसे करते करते लाल अक्षर से, लाल पेंसिल से पत्र लिखते थे, नीचे पे दादा विश्वतन लिखते थे कुछ जो हम समझ सके। बी चाइल्ड, बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर पेरेंट्स एंड टू को इंजीनियर्स। ये बाबा ने डायरेक्शन भेजी, तो हमने फिर इसी कार्य में, बाबा ने कहा तो ठीक है, हम पढ़ते भी रहे, इसी कार्य में लग गए। हम अपने लौकिक घर में गए, उनको ज्ञान सुनाने के लिए कहा ना, सारे हमारे लौकिक परिवार के ज्ञान में आते हैं, तो उनको ज्ञान सुनाया, पहले लौकिक माता जी को, पिताजी को, और माता जी जल्दी ज्ञान में आ गए, उनको बताया पवित्र रहना है, ये करना है, वो करना है, सब उन्होंने कहा ठीक है, खान पान ठीक है। लौकिक पिताजी बड़े भगत थे, बहुत भगत थे, उन्होंने बहुत भागवत पुराण, ये वो जो हमारे हैं सारे सनातन धर्म के बहुत पढ़े थे, और लोगों को भी सुनाए थे, हमको भी सुनाए थे। तो उनको कहा, सुनाया, कहता ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर ज्ञान है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या यदि आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, मुझे कुछ साक्षात्कार करा दे, तब मैं इस ज्ञान को पूरा मानूंगा और चलूंगा भी से। हमने कहा, हमें तो अभी तक कुछ दिखाया नहीं, तो आप तो अभी बाबा से नहीं मिले, मम्मा से नहीं मिले, किसी बहन से नहीं मिले, आपको कैसे दिखाएगा। फिर भी हम बताते हैं इंसिडेंट, हम गुरुवार का दिन था, हम सब बैठे, घर वाले भी और आसपास सभी लोग बाबा को भोग लगाने के लिए बैठे बैठे, तो वो अचानक उठ कर वो खड़े हो गए, क्योंकि हम पहले देखते थे, हमारी ध्यानी दादी थी, अंबाला से आती थी पटियाला में, वो आकर के भोग लगाती थी, हाथ ऐसे करती थी, कभी फूल देती थी, कभी कुछ देती थी, ऐसे करती थी, तो हम कहते थे ठीक है, ठीक ही होगा, हम उसको डिसबिलीव नहीं करते थे, भाई बाबा का हमारी कोई संशय नहीं था, लेकिन हम कुछ समझ नहीं आते, ठीक है जो भी है हो रहा, ठीक है, हमें तो ज्ञान से मतलब है। तो वो उठ के खड़े हो गए, जब तो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रियल इंस्टेंस है, कभी ये पकड़ते हैं, कभी ये पकड़ते हैं, कभी ये पकड़ते हैं, और उनको पकड़ने में नहीं आता, बड़े उदास होकर नीचे जैसे आए। मैंने कहा क्या हुआ, आई वॉज हैप्पी कि समथिंग इज हैपन्ड, कुछ हो रहा है, मुझे तो खुशी हुई, फिर कोई ध्यान में गया तो सही। तो उसने कहा, मुझे कहीं मैं गया, बहुत छोटा सा श्री कृष्ण बच्चा मुझे दिखाई दिया, बहुत लवली, बहुत सुंदर, क्योंकि श्री कृष्ण के बहुत भगत थे, क्योंकि बाबा तो है ना भक्त वत्सलम है, भक्तों की आश पूरी करता है। तो उसने कहा कि मुझे छोटा बच्चा दिखाई दिया, और मैं उसको पकड़ता हूं तो वो यहां से वहां, वहां से वहां, मेरे हाथ में नहीं आता है। तो मैंने कहा फिर नीचे उतर आए वो, फिर आपके कहा आपके बाबा दिखाई दिए, उन्होंने कहा जब तुम निश्चय बुद्धि होगे, श्रीमत पर चलोगे, तुम धारणाओं पर चलोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारे गोद में आएगा। ठीक है, वो चलने लगे, मान लिया उनने भाई, जबकि श्री कृष्ण को देख तो लिया कम से कम, आजकल तो कदा कोई रेखा दिख जाए तब भी लोग प्रभावित हो जाते हैं, उनने श्री कृष्ण छोटे बच्चे को देख लिया। फिर नेक्स्ट गुरुवार को फिर हम भोग लगाया, उनने सब धारणा वारणा जो छोटी मोटी थी कर ली, बुजुर्ग तो थे ही वो। अगली बार फिर वो ध्यान में गए, फिर वो उठे, फिर वो श्री कृष्ण सामने आया, उनको पकड़ा और अपने गले से लगाया, बहुत आंसू बहाए, उनकी मनोइच्छा उनकी पूर्ण होगी, बहुत खुश हुए, जिससे क्या हुआ, सारे लोग जो देख रहे थे वो तो इतने ज्ञान में थे नहीं, हमें पता था भी ये ध्यान का पाठ भी होता है, ये भी होता है, वो भी हैरान हो भी ये क्या हो रहा है। उनका नाम प्यारे लाल था, इतना बुजुर्ग आदमी क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन उनका ध्यान का पाठ खुल गया। उसके बाद तो इतना ध्यान में जाते थे, हम कोई पूछे बाबा से पूछ के आओ, वो फटाफट पूछ के आते थे, हम तो आश्चर्य करते थे। ये इंस्ट्रक्शन लेके आओ, ये डायरेक्शन लेके आओ। जैसे हमारे लौकिक फादर संदेशी बन गए, जब उसके बाद जब यहां मधुबन में आते थे कभी, जब सीजन नहीं होता था तो मम्मा उनको बिठाती थी स्टेज पर, प्यारे राम जाओ भोग लगाओ बाबा को, ऐसा इतना था वो। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि चलो लौकिक हमारे में किसी लौकिक को तो ध्यान का पाठ खुला, बहुत पाठ बजाया उन्होंने। तो वहां के सभी लोग प्रभावित हुए, हमारा लौकिक परिवार भी बड़ा खुश हुआ। उसको देख करके सारे हमारे तीन भाई, हम चार, अब तो चार भाई बहन सब, माता पिता आसपास वाले सारे ज्ञान में चलने लगे। आप देखिए पिछले यानी 58 साल से एक दो व्यक्ति हमारे परिवार से चले गए, शरीर छोड़ दिया, सब सलामत हैं। हमारी लौकिक माता जी भी हैं जिंदा, अभी 110 साल की हैं, हमारे साथ रहती हैं वो, यही पांडा ये ज्ञान अमृत भवन में। वो भी बस कहती हैं तीन चीजें मिलता है ना, आता है बस, और कुछ नहीं बोल सकती। बाबा को याद करो, सेवा करो और औरों को यहां पर ले आओ, इतने तीन शब्द बोलती है। वो भी जिंदा है अभी और सारे सेवा में लगे हुए हैं, समर्पित, लगभग समर्पित हैं। तो जिससे क्या है कि बड़ी खुशी हुई, बाबा ने जो वरदान दिया कि अपने लौकिक परिवार को ज्ञान दो, सारे हमारे लौकिक परिवार के ज्ञान में आ गए। उसके बाद बाबा ने कहा बच्चे को इंजीनियर्स को भी ज्ञान दो। हमने बहुतों को ज्ञान सुनाया, हम जब पढ़ते थे तो हर संडे को जाते थे पिक्चर देखने और जगह पर, पटियाला से अंबाला जाएंगे बस में बैठ करके, तो और भी स्टूडेंट जाते थे तो हम उसी बस में बैठ करके, उन दिनों में त्रिमूर्ति निकलता था, ये त्रिमूर्ति मैगजीन निकलता था, उसमें बहुत ज्ञान की बातें होती थी, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान, जो पेज खोलो सारे ज्ञान की बातें होती थी। हम वो बांट देते थे उन लोगों को और वो पढ़ते थे तो आश्चर्य खाते थे, ये ज्ञान क्या है, आप विचार करो क्या ज्ञान है बताओ मुझे। उस ज्ञान को वो कहते ये क्या आपकी बातें हैं, लेकिन इतना हमारा एंथुजियाज्म था, जोश होता था, इतनी मोमेंटम था, हम उनको जो भी आर्गूमेंट समझाएं वो समझ जाते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स थे हमारे ज्ञान में आने लगे। हमने हॉस्टल में कमरा बना दिया, वहां पर वो लाल बत्ती जला करके योग करना शुरू किया, वो चला करके, उन दिनों में होते थे वो ग्रामोफोन, तो वहां पर तो वो कहे हमारा जो वार्डन के ये तो बहुत गड़बड़ है तुम जाओ यहां से, तो हमने छोड़ करके हमने बाहर कमरा लेके सेवा करनी शुरू कर दी। मतलब जो बाबा ने कहा था सेवा में लग जाओ, तो हम सेवा में तभी से ही लग गए, कोई अटेंशन नहीं दी पढ़ाई पर। हम बताए आई वॉज स्टडिंग विद डिसइंटरेस्ट, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं था। कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी प्रदर्शनी है, कभी कुछ है, कभी भोग है, कभी ये है, सारा टाइम हम इसी में लगे रहते थे। बस कभी हफ्ते के बाद पहुंच के कॉलेज में जा करके वो हाजिरी लगा देते थे, खत्म। लेकिन तो उसी बीच में हम बाबा के पास भी कई दफा आए, मधुबन में भी आए, बाबा से मिलना हुआ, मम्मा से मिलना हुआ। तो मैं एक सुनाता हूं इंस्टांस, बाबा क्या शिक्षा देते थे। हम एक दफा आए कॉलेज में, अपना कैमरा वगैरह लेकर के आए, उसमें बाबा की एज 80 वर्ष की होगी मैं समझता हूं, फर्स्ट टाइम बाबा के पास आए मधुबन में, रजौरी गार्डन दिल्ली में तो बहुत बड़ा मिले लेकिन वहां पर है। तो उस समय बाबा क्या थे, आप जो देते उनमें मधुबन में क्या था, केवल जो बीच वाला टीन का भी है जगह वो थी ना, वो था रूम है ये, ना हिस्ट्री हॉल था, ना और रूम थे, ना ट्रेनिंग सेंटर था, कुछ नहीं था, और केवल एक मैदान था ग्रास का जिसको हम टेनिस कोर्ट कहते थे। वहां बाबा उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे वो सीन याद आया, यानी दादा विश्वतन बाल डालेंगे और वो लगाते थे और बच्चे पकड़ते थे, जैसे हम बच्चे होते थे, सारे आए हुए थे बाबा के बच्चे, बड़ा रिम जिम, बड़ा खेल कूद, जैसे वो है ना यमुना में वो गेंद फेंकते थे, ऐसे कुछ भागवत में वो सीन मुझे याद आया। तो मैंने कैमरे से बाबा की फोटो लेने की कोशिश की खेलते हुए, बाबा ने खेल बंद करके कहा नहीं फोटो मत लो। अब बाबा के फिर महावाक्य सुनो, बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने कहा बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, ये भगवान भगवानो वाच, मेरा फोटो नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, आप किसका फोटो नहीं आएगा, ना शिव बाबा का आएगा ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा का आएगा। और बाबा ने कहा ये शरीर ये तो किसी काम का नहीं। हमेशा बाबा आत्मा की तरफ ध्यान दिलाएंगे या शिव बाबा की तरफ ध्यान है। अपने इन चीज व्यक्त चीजों से ध्यान हटवाते थे। तो मैंने कहा बाबा तो ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं लेता। फिर बाबा ने कहा बच्चे चलो बाप बच्चे का दिल ला तो ले लो। तो फोटो तो ले ली। मतलब कहने का बाबा का कहने का ये मतलब था कि हमेशा शिव बाबा को याद करो और अपने को आत्मा समझो। शरीर को तो भूल ही जाओ, अपने शरीर को भी भूलना है, साथ साथ बाबा के शरीर को ब्रह्मा बाबा के शरीर को भी ना देख करके एक बुद्धि योग शिव बाबा में लगाना है। मैंने देखा बड़ा कौतक देखा उस वक्त बाबा की युगल भी जिंदा थी सुनो और मम्मा की मां भी जिंदा थी। उनका नाम रोचा था उनका नाम यशोदा था। लेकिन मम्मा की मां मम्मा को क्या कहेगी। मम्मा बोलती थी है बेटी बोलती थी मम्मा और बाबा और मम्मा उनको कहती थी रोचा नाम बोलती थी। हमें नहीं मालूम कि यह है बाद में मालूम पड़ा। और बाबा की युगल बाबा को बोलती थी बाबा और बाबा बोलते थे बच्ची। तो बताओ कितना देह के संबंधों से न्यारापन था। किसी को नहीं मालूम था कि ये बाबा की युगल है या मम्मा की मां है किसी को मालूम नहीं। शुरू से जब से बाबा ने यज्ञ रचा हमारी दादियां हमारे बाबा मम्मा हमारे ये देह के संबंध तो भूल ही गए। हम बताएं आपको पहला स्टेप है ना कर्मातीत फरिश्ता बनना है पहले तो देश के संबंधों से भूला हुआ हो फिर देह से भूला हुआ हो फिर शिव बाबा को याद करे। ये बात में तो वो थे हमने हैरान हुए कि बाबा की युगल है उनको वो बच्ची बाबा कहती है वो बच्ची कहता है। और भी जितने भी थे जो लौकिक संबंधी भी वहां थे हमारे पुराने किसी को नहीं पता था वो किसका कौन है किसका कौन है। बताइए क्यों बोले। मैंने एक दफा दादी गुलजार जी से प्रश्न किया हमारी आदिल दादी जी। मैं दादी जी आप तो छोटे 7-8 साल के थे आपको क्या पड़ी थी इस ज्ञान में चलने की किस बात ने खींचा आप यानी आप बताओ। आपने एक फोटो देखा होगा वहां पर कभी एल्बम में छोटे छोटे बच्चे 8 साल के 10 साल के 6 साल के 5 साल के 4 साल के 5 साल के बच्चे सब लाइन में खड़े हैं और बड़े बड़े वो भाई बंद लोग हैं कोई पगड़ी पहना हुआ है कोई बैत लिया हुआ है कोई टोपी पहना हुआ है सब उनकी वो रास्ता रोक रहे हैं क्या मंदिर तुम्हें नहीं जाने देंगे धूप निकली धूप में खड़े हुए हैं। मैं दादी आपको क्या पड़ी थी क्या क्या खींचता था आपको। दादी जी ने ये जवाब दिया कि और कोई बात ज्ञान भी नहीं था उस वक्त परंतु जो बाबा का प्यार था ना जो बाबा की पालना थी उसने ही हमको खींच के इस हमें यज्ञ में लाया। अपना ये बड़ी दादियां जो थी कम नहीं थी बड़े बड़े घरानों की बड़े बड़े अच्छे वो फैमिलीज की थी उन सभी को जो खींचा बाबा का ज्ञान तो बाद में जो पहले बाबा का प्यार था उसने उनको खींचा और बांध के रखा और आगे बढ़ाया। हम बताया तो ये हमने जब देखा वहां का तो और निश्चय बढ़ा के देखो भगवान आया हुआ है अब हमें क्या करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए बताओ जिसको ये निश्चय हो जाए गॉड हैज कम सोचो परमात्मा आ चुका है कलयुग जाएगा सतयुग आएगा नए युग की स्थापना हो रही है बाबा का कार्य चल रहा है तो जिसको निश्चय हो जाए पक्का क्या करेगा। तो हमने वो एक पक्का और निश्चय किया कि जो बाप का कार्य सो किसका बोलो हम बच्चों का कार्य ये निश्चय किया जो बाप का कार्य सो मेरा कार्य। तब से हमने कहा यही कार्य करना है चलते रहे पढ़ते रहे जैसे कैसे पढ़ाई पास हमको उम्मीद नहीं थी हम पास होंगे लेकिन पास हो गए किसी न किसी तरीके से पास हो गए। और फिर हम अपने लौकिक माता पिता तो ज्ञान में आ ही चुके थे उनको लेके मधुबन आए तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो पहले कहा था कि आपको ये पढ़ाई काम नहीं आएगी तो अभी आप कोई जॉब करने की दरकार नहीं कोई नौकरी टोकरी करने की दरकार नहीं बाबा ने ईश्वरीय सेवा में लगा दिया और हमको भ्राता जगदीश जी के पास भेज दिया सेवा के लिए। तो कितने साल तक वहां पर सेवा करते रहे भिन्न भिन्न अनुभव हुए हमने डिग्री लेने नहीं गया, अगर हम डिग्री ले तो वो भी क्या है कि एक सहारा हो जाता है। चलो भी यज्ञ में तो कई परीक्षाएं आती हैं इस सेवा करने में, तो परीक्षा है तो हम छोड़ देने, मैं लेनी नहीं डिग्री, तो ली नहीं और इस कार्य में लगे रहे। और बहुत समय बीत गया, देखो अब 57 से लेकर के 58 साल बीत गए हैं और बहुत नदियों में पानी भी बह गया, बहुत समय बीत गया और भी भिन्न भिन्न प्रकार से हमको सेवाएं मिली। फिर हमें वो मिली जब प्रदर्शनी बनी बॉम्बे में, तो हमें भी मालूम पड़ा, तो हमने भी एक चित्रों का सेट बनवा करके आर्टिस्ट से हम मधुबन में बाबा को दिखाने के लिए आए। नहीं, पहले सीढ़ी बनी तो बाबा को सीढ़ी बना के भेजी, बाबा को बहुत अच्छी लगी, तभी से बाबा के डायरेक्ट पत्र मुझको आने शुरू हुए, बच्चे ये बनाओ, बच्चे ये बनाओ, बच्चे ऐसे करो। जैसे मुरलियों में आप देखो ना, चित्रों पर बाबा को बहुत सेवा कराने का शौक था, तो इस प्रकार से हुआ। तो फिर हम बाबा बड़े अथॉरिटी से कहते थे, कोई डर की बात नहीं, बच्चे इसको गुजार में गुजारिला नंदा होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको कांटों की सेज में दिखा दो, उसके पीछे 5 प्लान का तकिया दिखा दो और भीख मांग रहा ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐसे चित्र बाबा बनवाते थे जो कि रियलिटी में एक पावरफुल होते थे। तो अभी भी लगे हुए हैं, आप जाएंगे तो कभी ऊपर पांडव भवन में लगे हुए हैं और वहां पर ओम शांति भवन में लगे हुए हैं, उसमें हिस्ट्री हॉल में वो जो लगे हुए हैं। तो हम बाबा के पास एक चित्रों का सेट बना के लाए, आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, 4-5 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए और हिस्ट्री बातें बढ़िया लेकिन उसका टाइम थोड़ा है, उसके पास बनवा के लाए, हिस्ट्री हॉल बन चुका था, वहां रखा। उस समय दीदी और बाबा थे, उन्होंने देखा, तो देखने के बाद कोई डायरेक्शन दी, करेक्शन दी, बात की। फिर हमें बाबा अपने कमरे में गए, हमें बाबा ने बुलाया, हम वहां गए, बाबा बड़े, बाबा तो सदा खुश हैं लेकिन बाबा एक छोटे बच्चे का कार्य, हम तो छोटे थे ना उस वक्त, उम्र भी छोटी थी, 25 साल के होंगे शायद उस वक्त, तो नहीं इस ज्ञान के लिहाज से। उनको बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, बाबा ने कहा बच्चे मेरे साथ बैठो, आप ऊपर जाएंगे गद्दी आप देखेंगे ना, बाबा ने कहा साथ बैठो। मैं तो बड़ा संकोच करने लगा कि बाबा के साथ गद्दी पर कैसे बैठूं। बाबा ने फिर वरदान दिया, बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, देखो यहां और आगे सुनो, बाबा ने कहा यहां भी और वहां भी, वहां कहां वहां बोलो, गोल्डन एज में, नई राजधानी में। अभी देखो आप बाबा की गद्दी संभालते हैं, अगर संभालते हैं ये भी, जो भी कारोबार आप करते हैं समझो बाबा का है, जब भी कोई कारोबार करो, कुछ भी करो, घर संभालो, कुछ भी करो, ये मत समझो हमारा है, अगर आप ये समझेंगे बाबा का है तो वो बाबा की गद्दी होगी ना। अभी देखो हमारा ज्ञान निर्मित भवन है, इतना कारोबार होता है, बहुत कारोबार होता है, तो अगर हम थोड़ा समझते हैं हमारा है, कोई बाबा का है तो बाबा की गद्दी संभाल लें ना। तो जो बच्चे बाबा की सेवा में लगे रहेंगे, बाबा की गद्दी यहां संभालेंगे, तो सतयुग में भी, गोल्डन एज में भी, नई राजधानी में भी वो गद्दी के मालिक अवश्य बनेंगे, ये बाबा ने वरदान दिया। तो लेकिन इस बात को सुन के हमें तो बहुत उमंग उसाया, कितना उमंग उसाया बात सुनिए। उसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, बहुत सारे म्यूजियम बने, हमारे अब तो बनाना बड़ा आसान है, कंप्यूटर से बना के छोड़ दो, उस वक्त तो कंप्यूटर थे नहीं, हर एक चीज हाथ से बनाई जाती थी, हर एक चीज। तो बना बना के बाबा कहते यहां भेजो वहां भेजो, कितने मेले बने, मेले जो जगह जगह मेले हुए, पहले सर्विस का तो यही साधन था, प्रदर्शनी, मेला, म्यूजियम, सब बाबा कहते उस जगह जाओ वहां बनाओ, और बाबा कहते म्यूजियम बनाओ, बाबा देखने के लिए आएगा, बाबा उद्घाटन करेगा। इस प्रकार से बाबा से बहुत लेन देन होती रहती थी, बाबा की मुरली में यानी कई प्रकार से उनकी जो पॉइंट्स आते थे सुन करके हम चित्र बनाते थे, नए नए चित्र बनते रहते थे। तो बहुत खुशी हुई हमें, बाबा ने मौका दे दिया सेवा करने का, तो बाबा अव्यक्त हुए। तो उसके बाद भी हमारी दादी प्रकाश बढ़ी, हमारे डिपार्टमेंट जो था उसका जैसे लेन देन हमारी दादी प्रकाश मणि के साथ होता था। फिर हमको ये जगदीश भाई फॉरन में जाने लगे बहुत, तो हमें कहा कि लिटरेचर के भी कार्य का संभालो, तब भी संभाला, तो हमें संभालने का मौका मिला। फिर हमें इतना कार्य बढ़ गया, इतनी प्रिंटिंग बढ़ गई, तो एक दफ़ा दादी प्रकाश मणि हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा दादी बाहर सारा दिन भटकते हैं, यहाँ छपाओ वहाँ छपाओ वहाँ छपाओ, उन्होंने क्या करना है, मैं दादी एक प्रिंटिंग प्रेस लगानी है। दादी ने उसी वक्त सेंक्शन कर दिया और प्रिंटिंग प्रेस हमने खरीद ली, और दादी जी ने एक मशीन खरीदी और दादी जी ने उनका उद्घाटन किया, तो मानो हमारे प्रिंटिंग प्रेस का जो फाउंडेशन है वो भी दादी प्रकाश मणि जी ने दिल्ली में रखा था, उसके बाद चेंज होकर यहां पर आए। इस प्रकार दादी जी बहुत दूरदृष्टा थी, क्या होने वाला है हमें थोड़ा मालूम था, हम तो कहते थे काल विनाश हो जाएगा, ठीक है अब भी कहते हैं काल विनाश हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को सोचते हुए भी दादी बहुत दूर की सोचती थी, हम यहां भी कैसे आए। इतना कार्य बढ़ गया प्रिंटिंग का, जगह हमारे पास कम थी, तो हमने दादी से कहा कि हम क्या करें, हम तो नोएडा में जाकर जगह प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाले थे। दादी और सब भाइयों ने कहा कि यहां आ जाओ, आप बताइए, यहां पहले कुछ नहीं था, सब चीजें होती थी वहां पर माउंट आबू में होती थी, लेकिन हमने कहा ठीक है, इतनी गांव था, बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ आवाजें आती थी पशुओं की और उसके जानवरों की, सांप थे, सब कुछ था, बिल्कुल कुछ था ही नहीं, जंगल था इसमें। तो हम आए, प्रिंटिंग प्रेस लगाई, तो दादी ने उद्घाटन किया, तो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ का जो ज्ञानमृत भवन है उसको भी बनाने के जो वो निमित्त बनी हमारी दादी प्रकाशमणि जी और भ्राता जगदेश जी, ये भी हम बताएं, और क्योंकि उनकी अगर ये ना होती प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है बताओ, वो इतनी कॉन्फ्रेंस होती हैं, इतने इतने सेमिनार होते हैं, इतने वो होते, बाबा आते हैं रात के, हम देखते थे कितनी देर तक वो बाबा रहते हैं, फिर हम मुरली छापते हैं, सबको बांटते हैं, तो ये सारा जो कारोबार था बाबा ने ड्रामा अनुसार इस प्रिंटिंग प्रेस को यहां लाए, उससे बहुत कार्य हुआ। अब कितनी किताबें हैं, सैकड़ों बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, पहले मैगजीन हम जहां पर आए थे केवल 30-35 हजार थी, इस वक्त 3,25,000 उसकी संख्या है, जबकि देखिए लोग ले रहे हैं खरीद रहे हैं उसको, वो उसमें मेंबर बने हुए हैं। तो ये सारा जो कारोबार है ड्रामा अनुसार हमारी दादियों की, हमारे बड़े भाइयों की कार से सब चल रहा है। तो अब हम कहते हैं और भी बहुत बाबा मामा की बातें हैं, परंतु अब हम कहते हैं बाप समान हम बने, वो कैसे बने, हम कहने का मतलब क्या है, सारा मैंने बोला उसका सारांश तो यह है कि जैसे बाबा थे हम भी बाप समान बने। कैसे बने बाबा, क्या बने, कर्मातीत फिश्ता, पुरुषार्थ करते करते, बाबा कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, खाने बैठता हूँ पहले याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, मेहनत है याद में बड़ी मेहनत है, बाबा ऐसे कहते हैं कल भी कहा कि याद में बड़ी मेहनत है, बच्चों को बड़ी मेहनत लगती होगी, बाबा अंदाजा लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि बाबा ने जो पुरुषार्थ किया हम भी वैसा पुरुषार्थ करके बाप समान बने। बाप समान बनने का क्या क्या बाबा बने, कर्मातीत फरिश्ता बने। कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज कौन सी है बताइए कोई, हम कर्मातीत फरिश्ता की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी पहली स्टेज कौन सी है बताओ कोई बोले तो। पहली स्टेज यह है सिंपल, आज मुरली में था, कि हम विकर्मा जीत बन जाएं। अब हम ब्राह्मणों से कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, पहली है बिल्कुल सिंपल, यानी एक मोटी मोटी बात है, अब हम ब्राह्मणों से कोई पाप कर्म नहीं हो, दृष्टि पवित्र हो पावन हो, तो यह है पहली स्टेज। अब मैं समझता हूं ब्राह्मणों की अब डिक्शनरी से पाप कर्म तो खत्म, विकर्म खत्म नहीं होता होगा, बाबा को भी फेथ हम बच्चों पर। दूसरी स्टेज कौन सी है आप बताओ, दूसरी स्टेज यह है विकल्प जीत, विकर्म जीत, दूसरी है विकल्प जीत। अब हमारे ब्राह्मणों के मन में बुद्धि में कोई विकल्प ना आए, बुरा संकल्प या नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। बाबा ये बाबा की उम्मीद है। देखो बाबा ने आज कितनी बात कही आज आज की वाणी में कि कैसे दृष्टि वृत्ति कैसे पवित्र रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा मुख वंशावली नो विकल्प, ठीक है, क्योंकि शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना ही योग है ना, उससे बैटरी चार्ज होती है। हम शुद्ध संकल्प करते हैं, बाबा को याद करते हैं, वर्षे को याद करते हैं, अपने स्वरूपों को याद करते हैं, ये सब शुद्ध संकल्प है, उससे आत्मारूपी बैटरी चार्ज होती है, और एक भी विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज। डर लगना चाहिए, ओहो विकल्प आ गया तो बैटरी डिस्चार्ज, नुकसान हो जाता है, और बार बार विकल्प आया तो फिर खत्म मामला। पहले बाबा कहते चलो विकल्प आता है तो कर्म में मत आओ, अब बाबा की ये बात नहीं है, विकर्म तो खत्म, विकल्प भी नहीं आना चाहिए, क्यों जैसा संकल्प वैसी हमारी वृत्ति बनेगी, वैसा वातावरण बनेगा। अगर हमारा संकल्प विकल्प होगा तो वातावरण ही बिगड़ जाएगा, हम औरों के योग में भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, सारे वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। नो विकल्प क्या हुआ, दूसरा विकल्प जीत, नो विकल्प। थर्ड क्या स्टेज है फिर बोलिए, थर्ड है व्यर्थ आतीत, नो व्यर्थ। व्यर्थ माने जो बाबा कहते हैं क्यों क्या ये वो तेरी मेरी इस वैसे, जिस बात में हमें कोई तल्लुक नहीं है वो संकल्प आ रहे हैं, वो है व्यर्थ। व्यर्थ और यह व्यर्थ आतीत, और फिर उसके आगे स्टेज कौन सी है, साधारण आतीत। हमारा संकल्प साधारण भी ना हो तो बाबा क्या कहते हैं अभी कि बच्चों में चलो विकर्म तो है नहीं, उनको फेथ है, विकल्प भी नहीं होगा, बाबा को यह भी फेथ है। फिर बाबा कहते थोड़ा बहुत अभी व्यर्थ बाकी है, ठीक है, बाबा ऐसे कभी कहते हैं, चलो व्यर्थ भी थोड़ा है परंतु समर्थ भी बहुत कम है, यानी हमारा सारा जो है संकल्प साधारण बहुत है। हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, हमारे संकल्प साधारण है, न्यूट्रल है, उससे कोई नुकसान भी नहीं तो फायदा भी नहीं, यानी टाइम वेस्ट जा रहा है। जैसे एक स्कूटर होता है ना, उसकी किक लगा दो और न्यूट्रल गियर पे खड़ा कर दो गाड़ी को, न आगे जाएगा न पीछे जाएगा। तो बाबा का मैं समझता हूं हम ब्राह्मणों के संकल्प अब कोई विकल्प नहीं होंगे, व्यर्थ भी बहुत कम होंगे परंतु समर्थ भी कम है। अब करना क्या है, पुरुषार्थ क्या है, केवल यही पुरुषार्थ है, सारा पुरुषार्थ है अपने संकल्पों को ठीक करना। जैसा संकल्प वैसी स्मृति, याद किसे कहते हैं आप, हमारा याद कोई बिगर विचारों के थॉटलेसनेस का योग नहीं है, हमारा योग थॉटफुलनेस का है, हमारे में शुद्ध विचार आए, शुद्ध विचारों का खजाना जमा करें, पॉजिटिव विचारों, पॉजिटिव विचार से पावर और प्योरिटी आती है। सत्युग में क्या चाहिए, क्राउन ऑफ पावर और क्राउन ऑफ प्योरिटी, वो एक पॉजिटिव विचार या समर्थ विचारों से आती है, शुद्ध विचारों से आती है। जितना हम इसको कलेक्ट करेंगे, जितना हम इसमें रहेंगे, उतना हम प्योर भी बनते जाएंगे, उतने हम पावरफुल भी बनते जाएंगे। तो क्या हमारा पुरुषार्थ है कि हमारा वो जो साधारण संकल्प है उसको चेंज करके पॉजिटिव संकल्प में लाना। अगर न्यूट्रल पर है तो कभी भी नेगेटिव हो सकता है, अगर पॉजिटिव होंगे पहले न्यूट्रल होगा फिर नेगेटिव होगा, हमेशा थिंक पॉजिटिव, यानी थिंक जो बाबा ने पॉजिटिव विचार दिए हैं, बड़े सिंपल हैं, कोई ज्यादा सोचने की दरकार नहीं है, ज्यादा डीप जाने की दरकार भी नहीं है, बाबा ने क्या विचार दिया, मैं आत्मा हूं, सबसे बड़ा गोल्डन विचार जो है यही, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, माइट हूं, बाबा गुण ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, अनंत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, जो इसी एक विचार को ही आप फ्लो करो, यानी वी हैव फ्लो ऑफ गुड थॉट्स, यानी प्योर थॉट्स, ये एक ही संकल्प है ना, आत्मा पर ही। बाबा कहते हैं एक संकल्प में टिकना ही एकाग्रता है। अब इसी एक ही संकल्प में भिन्न भिन्न जो हम गुणों को याद करें उसमें एकाग्रता हो गए, इनको याद करो, मैं कहाँ का हूं ये याद करो, मैं किसका हूं वो याद करो, अपने मैं वर्षे को याद करो या अपने चक्कर को याद करो, ये सारे पॉजिटिव संकल्प मैं शुद्ध संकल्प जो बाबा ने दिया है, इन्हीं संकल्पों में रहना ही वास्तव में तो योग है ना। कोई भी बात याद रहे इस प्रकार से याद में टिकना है और अपने व्यर्थ को समाप्त करना है। मैं बता रहा था कि हमें इन अपने व्यर्थ संकल्पों को हटा करके उसकी जगह पॉजिटिव संकल्पों को बार बार रिवाइज करें तभी रियलाइज होगा। ये नहीं कि हमने एक दफा कह दिया मैं आत्मा हूं तो काम पूरा हो गया, उसको बार बार रिवाइज करो, यानी एलिमिनेट ऑल अदर थॉट्स, और ये शुद्ध विचारों को बार बार लाना है और व्यर्थ विचारों को जो जिसका साधारण विचारों को निकालना है, और याद को रमणीक बनाओ। हम तो करने की कोशिश करते हैं, बाबा कहते ना याद में बड़ी मेहनत तो है, अगर हम इसको रमणीक बना लें, उनको जो बाबा ने बताए पांच स्वरूप बताए हैं, अगर उसमें याद में रहें निराकारी स्वरूप, ये आकारी स्वरूप और ये वो निर्विकारी स्वरूप, अलंकारी स्वरूप एंड निरहंकारी स्वरूप, यानी ये जो पांच स्वरूप हैं उसकी उसको हम बार बार याद करें तो बड़ा इजी है मेथड। हम तो इसको बड़ी कोशिश करते हैं करने के लिए, और दादी जी से पूछा मैंने कहा दादी ये तो बड़ा सहज मेथड है, दादी ने कहा ये भी करो परंतु बिंदु बन बिंदु को भी याद करो, वो भी करो, लेकिन ये चलते फिरते जो है पांच स्वरूपों में याद करते जाना, शुद्ध संकल्प तो है ही ना, ये इससे आपके प्योरिटी और पावर दोनों आएंगी। दूसरा, अगर हम बाबा को संबंधों से याद करें, मैं तो नौ संबंधों से याद करता हूं, बाकी है तुम्हारे सर्व संबंध, और हम तो बाबा के साथ प्रैक्टिकल में साकार में बाबा ने हर प्रकार से हमें संबंधों की बात में भी दी। वो क्या है, पहला जो संबंध है मोस्ट मीठा संबंध जो है, प्यारा संबंध जो है, डियरेस्ट मदर, हमारी मीठी माँ है, डियरेस्ट प्यारी मैया है, और स्वीटेस्ट फादर है, हाईएस्ट टीचर है, होलीएस्ट सतगुरु है, अनफेलिंग फ्रेंड है, सुलोना साजन है, सुप्रीम सर्जन है, फेथफुल चाइल्ड है एंड मोस्ट बिलविड माशूक है। ये नौ संबंध हैं, इसकी बड़ी परिभाषा है, इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन है। अगर हम उन चीजों को ये मर्ज करके और उसमें वो हम भाषणा अगर लेते हैं तो बहुत हमारी याद रमणीक बन जाएगी, हम याद में टिके रहेंगे, नीचे आने का भी इसे हटने का भी दिल नहीं करेगा। तो संबंधों से गुणों से किसी न किसी प्रकार से हम बाबा की याद को यानी सदा बाबा के तरह सदा बनाए रखें, तो जिससे क्या है बगैर याद के हमारे विकर्म विनाश होंगे नहीं, और याद से ही सारे कार्य होने हैं। हम कहते इसी में अगर हम लगे रहे ना सब काम ठीक होंगे, सब प्लानिंग भी ठीक होगी, सेवा केंद्र भी खुलेंगे, ये भी होगा, वातावरण भी ठीक होगा। इसी याद का अभ्यास ही हमारे सारे लौकिक अलौकिक कार्य भी सिद्ध कर देगा। हम बताएं बाबा कहते हैं देखो बच्चे मुझे कम से कम आठ बार तो इन स्वरूपों को याद करो, कहा ना एक दफा होमवर्क दिया था आठ बार स्वरूपों को याद करो, अब मालूम नहीं आप करते कि नहीं करते हैं, सब सारे दिन में आठ बार देखो एक दो करते हैं, सब नहीं करते। तो अगर हम अभी बाबा का कार्य नहीं मानते कहना नहीं मानते तो विनाश कैसे आएगा। तो हम इसका अभ्यास करें बस केवल अगर बिंदु बन बिंदु को याद नहीं कर सकते, मानो उसमें मुश्किल होती है, शुद्ध संकल्पों का खजाना तो जमा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलते फिरते खाते पीते उठते मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, अंदर अंदर रट लगी रहे। योगा मीन संकल्प सहित, विदाउट संकल्प थॉटलेसनेस तो है नहीं। हम तो इसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, काफी चल भी रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप भी करते होंगे। तो ये इस अभ्यास को करने से व्यर्थ समाप्त होगा, साधारण समाप्त होगा, तो हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बन ही जाएंगे ऐसी, और बनना भी हमको है। बाबा क्या कहते हैं, कौन बनेगा, थोड़ा भी बाहर से नए आएंगे, आप ही बनने वाले हैं, क्यों ना हम पुरुषार्थ करके एज अर्ली एज पॉसिबल बन ही जाएं। ओम शांति, ओम शांति।
बाबा।